जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राम जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय जय गुरीजनवन Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
जयदेव गोस्वामी का गाओगे, गा पाओगे जयदेव गोस्वामी का? हाँ, दसोवतार स्रोत गाओगे? समय भी नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं तत जयानुदीरये नष्टप्राये सुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती न इष्टके। हरे कृष्ण। श्रीमद्भागवतम कैंटो 9 अध्याय 26 श्लोक 53 पढ़ेंगे। 56 सॉरी। यदा यदा हि धर्मस्य क्षय वृद्धि च पापात्मनः तदा तु भगवान् ईश आत्मनं सृजते हरि। यदा यदा हि धर्मस्य क्षय वृद्धि च पापात्मनः तदा तु भगवान् ईश आत्मनं सृजते हरि। यदा यदा हि धर्मस्य क्षय वृद्धि च पापात्मनः तदा तु भगवान् ईश आत्मनं सृजते हरि। यदा यदा धर्मस्य पापात्मनं श्लोकों का शब्द अर्थ ऐसे है, थोड़ा कृपा करके बोल दीजिए। यदा जब, यदा जब ही निसंदेह धर्मस्य धर्म की क्षय हानि वृद्धि बढ़ोतरी च तथा पापात्मना पाप कृत्यों को सॉरी पाप कृत्यों की तदा तब तो निसंदेह भगवान भगवान एष परमनियंता आत्मनं साक्षात या स्वयं सृजते अवतरित होते हैं हरि भगवान हरि। ट्रांसलेशन एंड पर्पोरेटिव श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की ट्रांसलेशन। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब परम नियंता भगवान की हरि भगवान श्रीहरि स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। तात्पर्य जिन नियमों से भगवान इस धरा पर अवतरित होते हैं उनकी व्याख्या इस श्लोक में हुई है। इन्हीं नियमों की व्याख्या स्वयं भगवान ने भगवद गीता में भी की है। यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत अभिस्थान धर्म से तदात्मनं सृजाम्यहं। हे भारत, जब जब और जहाँ जहाँ धर्म की ह्रास धर्म का ह्रास होता है और अधर्म का प्राधान्य होता है तब तब मैं अवतार ग्रहण करता हूँ। वर्तमान युग में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में हरे कृष्ण आंदोलन का सूत्रपात करने के लिए प्रकट हुए हैं। वर्तमान समय में कलियुग में लोग अत्यंत पापी तथा मंद है, उन्हें आध्यात्मिक जीवन का कोई ज्ञान नहीं है और वो मानव रूप के लाभों का दुरुपयोग कुत्ते बिल्ली की तरह जीवन बिताने में कर रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण आंदोलन का सूत्रपात किया जो कृष्ण से अभिन्न है। यदि कोई इस आंदोलन से संबंध जोड़ता है तो वो भगवान के सान्निध्य में आता है। लोगों को हरे कृष्ण मंत्र कीर्तन का लाभ उठाना चाहिए और इस कलयुग में उत्पन्न सारी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहिए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुर्निमीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोमीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स पदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरौ त्रियुतपदकमलं श्रीगुरुन वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथनितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्युतंस। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तत्कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण। तो श्री व्यास देव जी ने भागवत के ये जो प्रसंग चल रही है भगवान कृष्ण, तो यहाँ पर कल आप लोग सुने होंगे भगवान कौन है। तो भगवान की व्याख्या करते हुए कल के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बताते हैं एदं चांस कलं कृष्ण कृष्ण कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान कौन है? न कृष्ण है, कृष्ण जो है भगवान है। और भृगुमुनि भी ये बात को प्रमाण करके बताए हैं। भगवान श्री कृष्ण जो है वो अवतारी है, और सारे जो है उनसे जो प्रकट हुए अवतार है। शंकर बलराम संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध वासुदेव तीन पुरुष अवतार, राम नृसिंह वामन बराह जितने सारे हैं ये भगवान श्री कृष्ण से प्रकट हुए हैं। और राधा रानी से गोपियाँ चंद्रावली गोपियाँ लक्ष्मियाँ जो अष्टपाठम आई थी ये सब राधा रानी से। ऐसे हमें जानते हैं जो 16108 भगवान के भक्त हैं वो श्रेष्ठ हैं। जितने सारे भक्त हैं उसमें से भगवान के 16108 श्रेष्ठ हैं, और ये 16108 में से 108 श्रेष्ठ हैं, और 108 में से 8 श्रेष्ठ हैं। 8 में से 2 है जो कि चंद्रावली और राधा रानी, और ये 2 में से राधा रानी श्रेष्ठ है। हाँ, भगवान के श्रेष्ठ भक्त कौन है? राधा रानी। और राधा रानी से सारे एक्सपेंशन जो भी सारे जो है ना अवतार गोपियाँ लक्ष्मियाँ जो सब ये हैं वो सब प्रकट हुए हैं। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण से सारे अवतार प्रकट हुए हैं। ये भगवान श्री कृष्ण से और ये जो राधा रानी से इस प्रकार का प्रकट लीला हुई है। इसी प्रकार कल हमें प्रभुपाद जी के तात्पर्य आप लोग सुने होंगे भगवान कौन है, और भगवान अवतार ही है, और बाकी जो है अवतार है, राधा रानी जो है राधा रानी से ही सब प्रकट होते हैं। इसी प्रकार कल आप लोग प्रभुपाद जी के तात्पर्य के अनुसार सुने होंगे। और भगवान जो कृष्ण जो भगवान है ये बात को बहुत बड़े भक्त अर्जुन भी प्रमाण बताया है। परम धाम परम क्या है परम भगवान ये सब ये अर्जुन ने भी बताया। और बहुत बड़े ऋषि तपस्वी मुनि ये भी भृगुमुनि भी बताए। इसी प्रकार कल आप सुने होंगे भगवान श्रेष्ठ है, कृष्ण जो भगवान है उनका प्रमाण आप लोग को कल थोड़ा बहुत मिला होगा जानते होंगे। तो आज के ये बातों में भगवान ना व्यासदेव जी बताते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य भगवान ए है। भगवान कृष्ण जो है भगवान है, भगवान कृष्ण कहाँ कब प्रकट होते हैं ना आज के तात्पर्य में आज के श्लोक में श्रील व्यासदेव जी बताते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य पहले भगवान कौन है ये बात जानना है, उसके बाद भगवान कब आते हैं कैसे आते हैं कौन सा समय में आते हैं ये बात को जानना है। तो यदा यदा ही धर्मस्य क्षय, जब धर्म की क्षय होती है और पाप की वृद्धि होती है उस समय भगवान संसार में प्रकट होते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य क्षय, गंगा के किनारे अद्वैत आचार्य ने बैठकर जब देखें कलिजुग का पाप को रोका नहीं जा पा रहा है और कलिजुग की पाप बढ़ रही है तो उनको भक्तों के द्वारा संभाला नहीं जा पा रहा है, ठीक उसी समय अद्वैत आचार्य ने गंगा के किनारे बैठकर तुलसी दल और गंगा जल के द्वारा शालिग्राम शिला का पूजा करते हुए इतने जोर से हुंकार आवाज किए तो वैकुंठ में भगवान को ये हुंकार पहुंचा, उनके कान में पहुंचा, वैकुंठ में भगवान के कान में ये हुंकार पहुंचा। और भगवान भगवान श्री कृष्ण जो कि चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होकर के संसार में प्रकट होकर के कलिजुग के पाप को रोक लिए। कैसे? भगवान चैतन्य जब संसार में प्रकट हुए कलिजुग का पाप को कैसे रोके ना प्रेम के हथियार के द्वारा, प्रेम के अस्त्र के द्वारा। और अवतार में देखें असुरों के विनाश के लिए भगवान कई अस्त्र धारण करते हैं, किंतु चैतन्य महाप्रभु जब संसार में प्रकट हुए उनके अस्त्र क्या था? संग पंग गदाधर नित्यानंद अद्वैत आचार्य ये सब चैतन्य महाप्रभु के अस्त्र थे। और प्रमुख रूप में चैतन्य महाप्रभु के अस्त्र क्या था? न हरे कृष्ण महामंत्र। क्योंकि भगवान चैतन्य ने जानते थे कि कलिजुग का लोग वेद को नहीं समझेगा, ये महाप्रभु को है भगवान को पता था। जय श्री श्री राधा गिरिधरी भगवान की, जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की, श्री प्रभुपाद की। भगवान चैतन्य को मालूम था कि कलिजुग के लोग वेद नहीं समझेगा, इसीलिए वो वेद को जो सार क्या वेद का सार मक्खन, जैसे हमें बड़े उत्कृष्ट चीज दूध उनको मंथन करते हैं तो सार के रूप में मक्खन लगती है, हमारे पास आती है। उसी प्रकार वेद को भगवान चैतन्य महाप्रभु ने मंथन करके तो मक्खन के रूप में हमें क्या दिए, उनके नाम भगवान के नाम हरे कृष्ण महामंत्र, और उनको डाइजेस्ट करने का वो व्यक्ति डाइजेस्ट कर सकता है जिनके पास बुद्धि है। जजंते ही सुमेधसा, जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो ही हरे कृष्ण महामंत्र को समझेगा। सब कोई नहीं, कलयुग में सब कोई हरे कृष्ण महामंत्र को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जो उन्नत बुद्धि तेज बुद्धि वाले होंगे, चैतन्य महाप्रभु बताए जजंति ही सुमेधसा, ये हरे कृष्ण महामंत्र को अमल वो व्यक्ति कर सकता है जिसके पास बुद्धि है। इसी प्रकार भगवान चैतन्य आकर के ये बात को बताया। और वास्तव में देखा जाए भगवान प्रकट होते हैं इस संसार में इसीलिए अपने भक्तों के भीतर आनंद को बढ़ाने के लिए। भगवान जब भी संसार में आते हैं केवल अपने भक्तों के भीतर आनंद को बढ़ाने के लिए। क्या है श्लोक, क्या है श्लोक, थोड़े से नहीं आ रहे हैं। ये बात को कुंती महारानी कहती है, भक्ति योग विधानार्थ। ऐसे तो वो असुरों को विनाश करना और धर्म को स्थापन करना वो अपने जगह में रह करके कर सकते हैं, किंतु विशेष रूप में संसार में आते हैं अपने भक्तों के भीतर आनंद को वृद्धि करने के लिए। ये बात को कुंती महारानी भी कहती है, भक्ति योग विधानार्थ। हे प्रभु, आप ये संसार में आते हो किस लिए? इसीलिए आपके भक्तों को आनंद को बढ़ाने के लिए। आपने दर्शन आपका दर्शन देकर भक्तों को सुख को बढ़ाने के लिए संसार में प्रकट होते। लेकिन जब भगवान इस संसार में प्रकट होते हैं, ये संसार के अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति अपने जैसे भगवान को मान लेता है। भगवान जब इसलिए भगवान कहते हैं अब जानती माम। हाँ, भगवान कहते हैं माम अब जानती, मुझे नहीं जान पाता है कौन, अब जानती नहीं जान पाता है कौन ना मूढ़ा, अब जानती माम मूढ़ा। इसलिए प्रभुपाद जी ने बड़े बड़े साइंटिस्ट लोगों को बता दिया, रास्केल तुम लोग नीचो। भगवान की बातें जब करते हैं तो आप और कुछ ऐसे बताते, इसलिए प्रभुपाद जी ने सीधे उनके मुंह में नीच ऐसे बहुत कठोर शब्द इस्तेमाल करते हैं। आप लोग सुने होंगे महाभारत में जब शिशुपाल ने भगवान को धिक्कार रहा था, भगवान का ऐसा बात कदर्ज समय उनको निंदा कर रहा था, ठीक उसी समय पितामह भीष्म ने उनको रोके। और पितामह भीष्म उनको समझा रहे थे तो शिशुपाल ने पितामह भीष्म को बोलते हैं, आप भाट की तरह हमेशा उसके ही गुणगान कर रहे हो। तो आप यदि गुणगान करना है, कृपाचार्य है, द्रोणाचार्य है, अस्वस्थामा है, उनका गुण क्यों नहीं गा रहे हो? यदि कृष्ण में इतने शक्ति है तो वो अपने प्रभाव मेरे ऊपर क्यों नहीं दिखाता है? मैं तो हमेशा उनकी ईर्ष्या करता हूँ, और जो ईर्ष्या करता है उनको वध करता है, भगवान ऐसे ना कृष्ण ऐसे हमें सुने हैं, लेकिन मैं तो बराबर जन्म से मैं उनका ईर्ष्या करता हूँ, वो उसका प्रभाव को मेरे ऊपर क्यों नहीं दिखाता है? तो इसी प्रकार जब शिशुपाल ने कहा तो पितामह भीष्म उसको वहां पर ऐसे बताए थे कि आप जब जन्म लिए ठीक उसी समय आपका मां ने भगवान को एक प्रमिस करके उनको बांध दिया है। जब शिशुपाल चेदिराज के परिवार में जन्म लिया तो उस समय जन्म होते ही उनका 3 आंख था और 4 हाथ था। जब शिशुपाल जन्म लिया उनके कितना हाथ था? 4 हाथ, और कितना आंख था? 3 हाथ। और ऐसे एक और जन्म होते ही वो गधा के जैसे रेंकने लगा, और इस प्रकार के बच्चा जन्म लेने वाला वो बच्चा का हालत को देखकर परिवार के सारे लोग वो बच्चा को त्यागने के लिए विचार किए। जब त्यागने जा रहे थे तो आकाशवाणी हुआ, हे राजन, उनके पिताजी को आकाशवाणी हुआ, हे राजन उस शिशु को त्यागो मत, और निडर होकर के इस शिशु का देखभाल करो, आगे जाकर के बहुत बड़ा बलि होगा, बहुत बड़ा वीर बनेगा। तो ये बात सुनकर के शिशुपाल की जो माँ थी वो प्रेम में पक गई, और आकाशवाणी के तरह उद्देश्य से वो प्रार्थना करने लगी, आप जो भी हो ना क्यों, आप भगवान हो कि देवता हो और अन्य कोई भी हो, मैं आपको प्रार्थना करती हूँ कृपा करके मुझे मेरे शिशु के, मेरे बच्चे के संबंध में जो भविष्यवाणी की उनके विषय में आप बताओ, उनका निधन, उनका वध किसके हाथ में होगी। जब उनके माँ ने इस प्रकार का आकाशवाणी की ओर पूछा, प्रश्न किया, तो आकाशवाणी ने दोबारा उनको उनका माँ को बताया था कि ये शिशु जिसके गोद में जाएगा तुरंत उनका अधिक जो दो हाथ है वो गिर जाएगा, और जिसके देखने मात्र से उनका दो आंख ना तीसरा आंख लुप्त हो जाएगा। तो ये चमत्कार शिशु के बाद जब संसार में फैल गया तो अनेक अनेक राज्यों के राजा लोग वहां पर पहुंचे। जब पहुंचे तो चेदीराज उनके जो पिता थे तो अपने बच्चे को वो सारे राजाओं के गोद में दिया, लेकिन उनका वो बच्चा का हाथ गिरा ना, तीसरा अंक लुप्त हुआ। कई राजा आए थे बच्चा का खबर सुन करके, तो चेदीराज ने अपने बच्चे को वो सारे राजाओं के गोद में दे दिए। हाँ, देखते हैं तो जो ये दो हाथ है, जो अधिक जो हाथ है वो गिरता है क्या, और तीसरा जो आंख है वो अदृश्य लुप्त होता है क्या। तो ये उद्देश्य जान रख करके उनके पिताजी ने सारे राजाओं के गोद में अपने बच्चे को उठा दिया। लेकिन तो ये किसी सारे राजाओं के गोद में जाने के बाद भी उनका दो हाथ को रहा, दो हाथ और वो आंख भी गया नहीं। और ये खबर जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम सुने तो अपने बुआ जी का घर में पधारे। जब पधारे तो बुआ जी ने प्रेम से अपने भतीजे के गोद में शिशुपाल को रख दिया। जैसे ही रख दिए, बुआ जी ने जैसे ही श्री कृष्ण के गोद में अपने बच्चा को रख दिया, तुरंत उनके जो अधिक दो हाथ था वो तुरंत अदृश्य हो गया, गिर गया, और तीसरा जो आंख था वो लुप्त हो गया। तो जैसे उन्होंने देखे कि मेरा बच्चा का दो हाथ गिर गया और तीसरा जो आंख था वो लुप्त हो गया, तुरंत वो भगवान श्री कृष्ण के चरण में प्रार्थना की, आप मुझे ये वर दो, मैं तो बहुत डर गई हूँ, और आप आर्तों को आश्वासना देते हो और भयातुर व्यक्ति को अभय देते हो, तो मैं आपको ये प्रार्थना कर दू, कृपा के मुझे ये वर प्रदान कीजिए कि मेरा पुत्र मेरे ओर देखकर मेरे पुत्र के सारे अपराध को आप क्षमा माफ कर दोगे। इसी प्रकार शिशुपाल की माँ भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना की। तो भगवान श्री कृष्ण वहां पर उनको ये बातें बताए थे कि बुआ जी शोक मत करो, मैं तुम्हें आश्वासना देता हूँ कि आपके पुत्र का 100 अपराध को मैं क्षमा कर दूंगा। तो ये वचन को बुआ जी को जो प्रमिज किए थे, वचन दिए थे, तो ये वचन को रखने के लिए भगवान श्री कृष्ण शिशुपाल के सारे अपराध को सहते गए। लेकिन जब भूरी सभा में शिशुपाल ने भगवान का बेइज्जत किया और सारे राजाओं के सामने उनका अपमान किए, तो तुरंत वहां पर भगवान श्री कृष्ण सारे राजाओं को ये बताए कि उनके माँ को जो वचन दिया था वो वचन को रक्षा करने के लिए मैं उसका सारे कटुक्ति को अभी तक सहते आया, लेकिन मैं उनका माँ को ये बताया था आपका पुत्र का जब 100 अपराध पूरी हो जाएगा, ये संख्या जब पूरी हो जाएगी तब मैं उनका मेरा जो शपथ है मैं पालन करूंगा, मेरा जो धर्म है संसार का धर्म पालन करना मेरा प्रथम कर्तव्य है, वो कर्तव्य को निभाते हुए मैं मेरा कार्य करूंगा। तो भूरी सभा में जब शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण का कुश रटना कर रहा था, तो तुरंत भगवान श्री कृष्ण उनका सुदर्शन चक्र को स्मरण करके उनका निधन कर दिए थे। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है, जैसे हमें भगवान श्री कृष्ण को जान लेते, भगवान भगवद गीता में भी बताते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम जो व्यति तत्व त्यक्त्वा पुनर्जन्म इमामेति सर्वं। हे अर्जुन, जैसे कोई व्यक्ति संसार में जैसे कोई व्यक्ति मेरे जन्म और कर्म के अवगत हो जाता है, मेरे जन्म जो दिव्य है मेरे कर्म के विषय में ठीक ठीक समझ जाता है, तो पुनः जन्म नहीं होता, वो व्यक्ति भौतिक जगत से पार हो जाता। केवल इतना ही, मेरे जन्म और कर्म ये विषय में जो व्यक्ति सही रूप से ज्ञान हो जाता, जो व्यक्ति को सही रूप में ज्ञान हो जाता, फिर भौतिक संसार उनके लिए विपत्ति का कारण नहीं बनता, वो व्यक्ति मेरे पास पहुंच जाता। ये बात को भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ वादा करते हैं, बस केवल मेरे जन्म के विषय में मेरे जन्म और कर्म को सच मान लो, विश्वास कर लो, इतने ही करोगे मैं तुम्हारा उद्धार दायित्व तो मैं खुद प्रत्यक्ष रूप में वहन करूंगा। ये भगवद गीता में ये वचन देते हैं भगवान श्री कृष्ण हमें, और ये बात को भी प्रमाण की है। हाँ, युधिष्ठिर महाराज जब राज से यज्ञ कर रहे और भीमसेन को किचन में किचन का सेवा दे दिए थे, और नकुल सहदेव को क्या सेवा दिए थे, वेलकमिंग में दिए दिए थे, गेस्ट वेलकमिंग में दे दिए थे, और अर्जुन को कलेक्शन में, और युधिष्ठिर महाराज को और कुछ सेवा दिए। इसी प्रकार युधिष्ठिर महाराज दिए थे, भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज इस प्रकार जो सेवा दे दिए थे, तो सारे सेवा बांटने के बाद भगवान श्री कृष्ण वहां पर पहुंचे और पहुंच करके युधिष्ठिर महाराज को विनती करते हैं, ऐसे हरण नहीं करते हैं, विनती करते हैं, भाई जी भाई तो इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हो, सारे इतना बड़ा यज्ञ का सारे सेवा तो आप बंटवारा कर दिए, मैं क्या रखा, मुझे मेरे हिस्सा में आपने क्या, मेरे हिस्सा में आपने क्या रखा, मुझे आप बताइए, मुझे भी कुछ सेवा करना है। तो वहां पर युधिष्ठिर महाराज बताते हैं आपके लिए तो और तो कुछ सेवा नहीं है। तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं, तो मेरा सेवा मैं खोज लूं, ढूंढ लूं ना, देख लीजिए, युधिष्ठिर महाराज उनको बताते देख लीजिए, यदि है तो आप ले लीजिए। तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि इतने बड़े यज्ञ कर रहे हो, इतने बड़े यज्ञ में जो गेस्ट आएंगे, अतिथि आएंगे, तो उनका चरण प्रक्षालन, उनका चरण की धोना, धोना, और जो अतिथि लोग प्रसाद लेंगे ना, तो वो प्रसाद लेने के बाद झूठी पत्ता छोड़ देंगे, ये दो सेवा मुझे दे दीजिए। तो कहने की अर्थ ये है, जो भगवान सारे ब्रह्मांड के प्रभु है, वो अतिथि और लोगों का चरण धोना और झूठी पत्ता उठाना, ये कार्य करके हमें ये शिक्षा देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति भगवान के जो कर्म कि भगवान ने बाधा किए, मेरे कर्म, जन्म कर्म, जो मैं दिव्यं, भले ये और लोगों का चरण धोना और झूठी पत्ता उठाना, ये भगवान अपने लिए चुन लिए, लेकिन भगवान यहाँ पर कहते हैं जन्म कर्म च मैं दिव्यं, मैं जो भी कर्म करता हूँ वो दिव्य है, वो साधारण नहीं है। तो यहाँ पर भगवान पत्ता उठाएं या दूसरों का चरण धोएं, वो दिव्य है, ये साधारण नहीं है। भगवान यहाँ पर कहते हैं यही बात को जो जान लेता है, जो व्यक्ति ये सोच लेता है, अपने मन में ये विचार कर लेता कि ब्रह्मांड के प्रभु होकर वो झूठी पत्ता उठा रहे हैं और लोगों का चरण धो रहे हैं, केवल इतने विचार हृदय में आने मात्र से हमें अनेक अनेक पापों से छूट कर भगवत धाम जाने का योग्य बन जाते। ये कहने की ये अर्थ है कि भगवान कह दिए कि मेरा कर्म जो दिव्य है, और मेरे दिव्य कर्म को जो समझ लेता पुनः ये भौतिक संसार में नहीं लौटता, ये बात भगवान स्वयं कह रहे हैं। और कभी कभी भगवान जब संसार में प्रकट होते हैं तो उनका प्रकट के विषय में हमारा संदेह हो जाता है, बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े कर्मी, ज्ञानी, योगी, ध्यानी, बड़े बड़े आध्यात्मिक रास्ते में चलने वाले व्यक्तियों की भी भगवान के जन्म के विषय में संदेह उत्पन्न हो जाती है। तीर्यक, नृ, ऋषिसु, कभी भगवान जलचर बन के आते हैं, कभी स्थलचर बन के आते हैं, कभी आधा मनुष्य आधा पशु बन करके आते हैं, कभी सुअर बन के आते हैं, कभी मछली बन के आते हैं। मलेशिया में जब हमारे भक्त लोग जाके प्रचार करते थे तो मलेशिया के जो मुस्लिम लोग है तो हमारे हिंदुओं के मंदिर में आते थे, तो हमें जो हिंदू लोग जब बंदर को, हनुमान जी का पूजा करते हैं, अरे ये मंकी भगवान है, ये फीस भगवान है, ये पीक भगवान है, सुअर को पीक कहते हैं, तो ये पीक भगवान हो गया, ये फीस भगवान हो गया, ये मंकी भगवान हो गया, ये कैसे हिंदुओं का भगवान है, तो ये लोग जानते नहीं है, लेकिन हिंदू जानते हैं, जो भक्त हैं वो जानते हैं। इसीलिए भगवान कभी जलचर बनते हैं, कभी स्थलचर बनते हैं। तो ये विषय में ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र, ऐसे कि कुंती महारानी को भी संदेह उत्पन्न होती है। गोपी आदित्य तुई कृतग्राज दाम ताव जाते दशा अश्रु कल, जाते दशा अश्रु कल अंजन संभ्रम अक्षम वस्त्र निजंग भय भावना स्थित सामांग विमोहित यदि व्यवहिति स्वयं भय। वहां पर कुंती महारानी भी बोकला जाती है, कुंती महारानी भी धर्म संकट में हो जाती है, अरे कैसे हो आप, आप कैसे हो, गोपी आदत तोई, गोपी ने जो बांध दिया आपको, कुछ गड़बड़ किए थे आपने, गोपी ने बांध दिया, तो आपने जाते वो समय आपका दशा कैसा था, जाते दशा आपका हालत कैसा था, जाते दशा अश्रु कर आप थपक थपक कर रो रहे थे, और ऐसे छोटे बच्चे जैसे हाथ को लेकर के आंख को रगड़ता है ना रोते समय, ऐसे रगड़ रहे हो और आंख आंख की काजल आपका सारे मुंह में हो गई है, तो ये कैसे जाते दशा आपके कल अंजन संभ्रम अक्षम, अक्षम मतलब आंख दोनों आंख को आप रगड़ते हुए जब आप रो रहे थे ना और आंख के काजल सारे मुंह में लग गए थे ना, बड़े ही आकर्षक ऐसे कि लक्ष्मिया को भी वो रूप आकृष्ट कर रही थी। हाँ, और वो समय क्या था ना, वस्त्रंग और नीचे की ओर मुंह कर करके कुंती महारानी कह रही कि वक्त्र निन्यम, आप नीचे की ओर मुंह करके भय भावना स्थितस्य, और बड़े डरे हुए अवस्था में, आप बड़े डरी हुए अवस्था में स्थितस्य, आपका स्थिति वो समय कैसा थी ना, भय भावना, भय आप बड़े भयभीत हुए थे। हाँ, जिसको अरे बाबा आप साक्षात भय जिसको डर रहा है, तो महाराज आप किसको डर रहे हो, वहां पर कुंती महारानी कह रही है नीचे को और मुंह झुका करके भय भावना, भय से एकदम कांप रहे थे, आपका सारा शरीर कांप रहा था वो समय, तो आप किसको डर रहे हो, जिसको साक्षात काल डर रहा है तो फिर आप किसको डर रहे हो, सामांग बीमो हुई थी, बड़े ही आपका ये कर्म, बड़े ही आपका ये लीला, बड़े ही मुझे मोहित कर रहा है। तो कहने के अर्थ यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जसमती मैया के भीतर मातृ रस को बढ़ा करके, माँ के भीतर मातृ रस बढ़ा करके उनको आनंद प्रदान करने के लिए इस प्रकार की लीला कर, इस प्रकार के कर्म कर रहे थे। भगवान कहे कि मेरा कर्म दिव्यम, तो इसी प्रकार कर्म करके अपने भक्तों को आनंद को बढ़ाने के लिए भगवान इस संसार में इस प्रकार का लीला करते, इसी प्रकार का कर्म करते। हाँ, आप लोग सुने होंगे, आगे जा करके थोड़े समय के बाद हमें सुनेंगे दशम स्कंद में, जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा में रह रहे थे, ब्रज लीला को समापन करके जब मथुरा लीला कर रहे थे, और मथुरा लीला के समय जो मथुरा में वास कर रहे थे, ठीक उसी समय बहुत बड़े असुर भगवान के दुश्मन आया था मथुरा में, और वो भगवान चाहते थे तो वहीं पर उनका वध कर सकते थे, लेकिन वो किए नहीं, क्यों नहीं किए ना, अपने भक्तों को दर्शन देके अपने भक्तों का आनंद को बढ़ाने, अपने भक्तों को सबको बढ़ाने के लिए वहां पर वो काला जबन को नहीं मारे और दौड़े भागे, ये भीड़ का पुरुष के जैसे डर करके भागने लगे, और ये काले जबन उनका पीछा किया, और काले जबन को लेकर के वो कहां तक गए, जहां पर उनका भक्त मुचुकुंद देवताओं के सेनापति कार्तिक के आशीर्वाद भर लेकर के खूब लंबा समय तक सोया हुआ था, जब मुचुकुंद जी देवताओं को लड़ रहे थे, थक गए थे लड़ाई करते करते थक गए थे, तो देवताओं ने उनका युद्ध कला को देख करके प्रसन्न होकर उन्हें वर देने के लिए इच्छा किए, और वो समय देवता ये मुचुकुंद ने देवताओं को वर के रूप में मांगे थे, यदि मुझे कुछ वर देना चाहते हो तो यही वर दो कि मैं अभी बहुत क्लांत हूँ, बहुत थक चुका हूँ युद्ध करते करते, तो आप मुझे ये वर दीजिए, मैं लंबा समय तक सो जाऊं, और मेरे सोने में जो बाधा उत्पन्न करेगा तो मेरे देखने मात्र से ध्वंस हो जाएगा। तो इस प्रकार वर लेकर के जब मुचुकुंद जी पहाड़ के गुम्फे के भीतर सोए हुए थे, तो वही गुम्फे के पास भगवान श्री कृष्ण उनको काल जबन को लेके गए, और वहां पर पहुंच करके भगवान श्री कृष्ण गुम्फा के भीतर प्रवेश कर जाते हैं। जब अंदर जाते हैं तो ये काल जबन बाहर खड़े बहुत धिक्कारता है, तुम ऐसे हो ऐसे कैसे तो गाली दे करके, फिर काले जबन भी पीछा करते करते वो गुम्फा के भीतर जाता है। जब जाता है वहां पर भगवान थोड़े समय के लिए अदृश्य हो जाते हैं, कि भगवान ना मेरे भक्त सोया है, उनको डिस्टर्ब क्या करना है, तो थोड़े समय के लिए अदृश्य हो जाते हैं। हाँ, और काले जबन जब गुम्फा के भीतर प्रवेश करता है तो देखता है सो गया, तो खूब जो लात लगाता है, वो लात खा करके मुचुकुंद जी का निद्रा भंग हो जाती है। तो पहले तो देवताओं के योग शक्ति है, वर प्राप्त है, तो जैसे ही मुचुकुंद जी काले जबन को दृष्टिपात करते हैं, तुरंत तो उनका दृष्टिपात से ही काले जबन का ध्वंस हो जाती है। जैसे काले जबन ध्वंस हो जाता है, तो उसके बाद भगवान श्री कृष्ण मुचुकुंद के सामने प्रकट होते हैं, और भगवान श्री कृष्ण जो प्रकट होते हैं, पूरा जो अंधेरा गुम्फा था वो एकदम जगमग जाती है, चमक जाती है। और ऐसे एक सुंदर पुरुष को देख करके मुचुकुंद जी प्रसन्न हो जाते हैं, और उनके हाव भाव लक्षण को देखकर मुचकुंद जी समझ जाते हैं ये और कोई नहीं है, मैं मेरा इष्ट है, मैं जिनको इतने जन्मों से तप कर रहा था कि मुचकुंद जी ये जन्म का भक्ति नहीं है, भगवान श्री कृष्ण जो दर्शन दिए गुफा के भीतर ये जन्म का भक्ति का फल नहीं, कई जन्मों से तप कर उठा रहे थे, कई जन्म का तपस्या का पूंजी का फल स्वरूप भगवान श्री कृष्ण गुम्फे के भीतर जाकर उनको दर्शन दिए, गुम्फे के भीतर जाना पड़ा भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए। हाँ कई कई जगह जाते हैं, इसीलिए भगवान नारद जी को मना कर दिए, मैं एक वैकुंठ में नहीं रहता, योगियों के हृदय में नहीं रहता, हाँ तब मैं कहाँ रहता हूँ मैं ना, जहाँ पर मेरा भक्ति मेरा कीर्ति को बखानता है, हाँ वही मेरा घर है, वही मेरा निवास स्थान है, वहीं पर मैं अटक जाता हूँ, वहीं पर मैं रुकता हूँ, हाँ हे नारद मेरा एड्रेस वही है, मुझे भी पाना चाहते हो तो मेरा ठिकाना क्या है ना, मेरा भक्त जहाँ पर है मैं वहीं पर हूँ। तो भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए नरक में भी जाने के लिए हिचकते नहीं है, ये भक्तों की भक्तवत्सलता के बहुत बड़ी लक्षण है। तो हमें देख और आज के ये तात्पर्य में प्रभुपाद जी एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु का प्राकृतिक इसलिए हुआ कलयुग में ना हरे कृष्ण आंदोलन का सूत्रपात करने के लिए, ये बात को भगवान चैतन्य महाप्रभु जन्म होते ही कर दिखाए, जब चैतन्य महाप्रभु जन्म लिए रोते रहे हाँ जब छोटे बच्चे थे ना, रोते रहे क्या राम राम ने कुछ हंस रहे थे ऐसे कुछ, लेकिन जब बच्चे होते हैं ना और बच्चे के समय रोते रहते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु रो रहे थे बच्चे के समय, रो रहे थे और बंद नहीं हो रहे थे, सारे स्त्रियां आकर के उनके पास हाथी दे रहे थे, घोड़ा दे रहे थे, बाजा बजा रहे थे, गाना गा रहे थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु और रोते जा रहे थे, उनका रोना बंद नहीं हो रहा था, कई प्रयास किया जा रहा था लेकिन उनका रोने के बंद नहीं होता, उनका रोना बंद नहीं होता था। हाँ तो अचानक ये स्त्रियों में से एक स्त्री हरी बोल ऐसे कहने लगी, एक स्त्री ने अचानक हरी बोल कहने लगी, जैसे ही एक स्त्री ने हरी बोल कहने लगी तुरंत चैतन्य महाप्रभु का जो रोना तुरंत बंद हो गया। तो चैतन्य महाप्रभु जन्म लेते ही वो हरे कृष्ण मंत्र का प्रचार करना शुरू कर दिए, केवल रोने के माध्यम के द्वारा वो जन्म होते ही हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करना शुरू कर दिए थे, और वही वहां पर वो बता दिए थे यदि कोई कलयुग में मुझे प्रसन्न करना है हरे कृष्ण महामंत्र विधान यही है, यदि कोई व्यक्ति मुझे प्रसन्न करने की इच्छा रखता है तो हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा ही मुझे प्रसन्न कर सकता। महानिधि स्वामी एक बहुत बड़ी बात बताते हैं चेंटो आर्ट ऑफ चेंटिंग में, समय नहीं है हाँ, तो ये बात भी श्रीमद भागवतम बताता, ये तनाम विवसो गृणं सत्य सदा सद विमुच्यते, व्यासदेव जी भी यही बात को बताते हैं 5000 साल पहले चैतन्य महाप्रभु आकर जो बताए थे उसके पहले श्रील व्यासदेव जी भी यही बात को डिक्लेरेशन कर दिए थे, यतनाम विवसो गृणं तदा सद्य विमुच्यते, तुरंत मुक्त हो जाएगा, देरी नहीं है, ऐसा देरी नहीं होगा, तथा तुरंत सारे पापों से मुक्त हो जाएगा, तथा सद्य विमुच्यते, कैसे किसी भी हालत में किसी भी दशा में व्हाट एवर योर हाँ जो भी परिस्थिति में हो हाँ, तो तुरंत यतो नाम विवस अवस्था में यदि मेरा गुणन मेरा नाम को उच्चारण करता है सारे पापों से छूट जाता है, ये बात भी श्री व्यासदेव जी भी बताते हैं। और आज के तात्पर्य में भी प्रभुपाद जी बताते हैं कि कलयुग के लोग ऐसे हैं ना अति पापी है, उनका बुद्धि बड़ी खोटी है, बड़े मंद बुद्धि के हैं, हाँ प्रायण अल्पायुष कलयस्मिन योगे जना मंद से मंद मते मंद भाग्य ऊपर सब हतभागे बन चुके हैं कलयुग में, सब हतभागे क्यों ना भगवान को नहीं समझते, हतभागा कौन है जो भगवान का भक्त नहीं है, जो भगवान का भगवान कौन है जानता नहीं है, क्योंकि यही से मनुष्य जीवन शुरू, भाग्य कहाँ से शुरू होती है, भक्ति से, भगवान को समझने से भाग्य उदय होती है, यही बात श्री रूप गोस्वामी पाद जी पहला प्रश्न था चैतन्य महाप्रभु के लिए, चैतन्य महाप्रभु के प्रति यही प्रश्न था के आमी जारे के ने तापत्रे हम लोग ब्रह्म जिज्ञासा, यही से मनुष्य जीवन शुरू होती है। तो कलयुग के मनुष्य इसीलिए मंदबुद्धि के हतभागा है ना, भगवान का भक्त नहीं है, इसीलिए प्रभुपाद जी आज के लाइन में बताते हैं। और एक मनुष्य पाप कब करता है ना, जीवन का उद्देश्य को जब भूल जाता है तब वो पाप शुरू कर, जब जीवन के लक्ष्य को नहीं, अब जीवन का उद्देश्य को जब नहीं समझता है व्यक्ति, तब क्या करेगा? पाप करेगा। जब जीवन का उद्देश्य को नहीं, मनुष्य जीवन को नहीं समझेगा तो पाप करेगा। अब पाप से क्या होगा? पाप से मृत्यु होगा। बार बार जन्म मरण मरण की चक्र चलते रहेगा। तो यही बात को प्रभुपाद जी आज के लाइन में भी बताते हैं। और कलयुग में पाप क्या है? कलयुग में पाप का स्थान कहाँ है? मेडिटेटिंग, गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन, इलिसिट सेक्स। लेकिन यही यही बातों को भरपूर बढ़ाया जा रहा है। कलयुग में पाप कहाँ पर बैठा हुआ है? चार चीज में, मेडिटेटिंग, गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन, इलिसिट सेक्स। ये चार चीजों में पाप है। लेकिन कलयुग में, कलयुग का सरकार यही चीजों को पूरा अपना ताकत लगा करके बढ़ा रहा है। हजारों गाय कटी जा रही है। हाँ, लाइसेंस दे के रखा है, शराब का आधा खोलो। और लोग मांसाहार करने के लिए इतने उत्सुक है। हाँ, और अवैध संघ करने के लिए आकाश छुआ गगन बनाए, आकाश छुआ अट्टालिका बनाए जा रहे हैं। फाइव स्टार होटल, ये सब क्या है? नरक की अड्डा है। ये सब मांस खाना, शराब पीना, अवैध संघ करना, ये सब मांस की अड्डा। और यही चीज ज्यादा कलयुग में दिखाई पड़ रहा है। और वर्तमान का सरकार तो आंख बंद करके सिग्नेचर कर, जाओ खोलो करो, यही हो रही है। कलयुग में पाप यही है। हाँ, लेकिन परीक्षित महाराज जैसे सरकार, परीक्षित महाराज जैसे सरकार ने पहले यही चार चीजों को रोका, आते ही उनको रोका। परीक्षित महाराज क्या किया? पाप को रोकना है तो ये चार चीजों को पहले पकड़ा। हाँ, तो ये वर्तमान के जो लीडर्स है, तो परीक्षित महाराज से, पहले के राजाओं से यही शिक्षा लेनी चाहिए। हाँ, तो आज के ये तात्पर्य के द्वारा हमें यही ज्ञान ले सकते हैं कि हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा हमें सारे पापों से मुक्त हो सकते हैं। तो आज के श्लोकों से हमें यही शिक्षा करते हैं। तो आज के और एक महान भक्त जयदेव गोस्वामी, उनका अप्रकट तिथि है। जयदेव गोस्वामी एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए थे, पुरी जिला में केंदुली ग्राम। जो लोग उड़ीसा के हैं वो लोग जानते हैं, पुरी जिला में केंदुली ग्राम। तो वहाँ पर एक ब्राह्मण परिवार में जयदेव गोस्वामी जी प्रकट हुए थे, जन्म लिए थे। और 11 साल के जब हुए थे, वो पिता माता को खो चुके थे और पूर्ण रूप से जगन्नाथ जी के आश्रय ले लिए थे, जगन्नाथ जी का शरणागत हो गए थे। और 11 साल जब 11 साल के जब हुए थे, तो उनके पिताजी जब थे तो गांव के महाजन से कुछ पैसे कर्ज लिए थे। लेकिन पिताजी ने कर्जा न चुका के, सुझा के न दे करके वो शरीर छोड़ दिए थे। जब पिताजी का देहांत हो गया तो गांव का जो महाजन था, आए जयदेव गोस्वामी के घर पर। आ करके जयदेव गोस्वामी, वो समय 11 साल बच्चे थे, जयदेव गोस्वामी को दिखाएं, एक वकील का कागज को दिखाएं। हाँ, दिखाते हुए ये महाजन का कहा जयदेव गोस्वामी को, देखो बेटा, तुम्हारे पिताजी ने मेरे से इतने पैसे रुपया लिए थे लेकिन न दिए, मर गए। तो आपको आज से आपका जो जागा जो संपत्ति है, ये आज से मेरा है। तो ये वकील का कागज है, तो इसमें आप दस्तखत कर दो। तो जयदेव गोस्वामी वैष्णव मीन्स वैष्णवाता मीन्स सिंप्लिसिटी, वैष्णव जो होता है बहुत सरल होता है, बच्चे के माँ की होती है। तो जयदेव गोस्वामी भगवान के भक्त थे। हाँ, तो सीधा लिए कागज लिए और दस्तखत कर दिए। जैसे ही दस्तखत कर दिए कागज के ऊपर, तुरंत ये महाजन के घर में आग लग गया। यहाँ पर जयदेव गोस्वामी जी महाजन के वकील का कागज में दस्तखत कर रहे हैं, वहां पर जो महाजन के घर में आग लग गया। जैसे ही आग लग गया और महाजन का बालक दौड़ दौड़ आया और महाजन को बोला कि हमारे घर में आग लग गया। जैसे महाजन सुना कि घर में आग लग गई है, तुरंत वो कागज को छोड़कर भागा। आज जय गोस्वामी जी भी वो महाजन के पीछे पीछे गए। और जाकर जब वहां पर पहुंचे, देखे सारे घर आग में जल रही है। और जय गोस्वामी घर के पीछे घुस गए, घुस करके महाजन का अनेक मूल्यवान प्रॉपर्टी को उधार करके जलता हुआ घर के भीतर घुसे। और सारे महाजन का बहुत सारे संपत्ति को घर से उधार करके ला करके महाजन को दिए। जब इस प्रकार का देखे महाजन ने, तो तुरंत जयदेव गोस्वामी के चरण में गिर गए। और उसी समय से महाजन भी भक्त बन गया। अब इस प्रकार जब कार्य देखें संसार की, इस प्रकार फंदी को जब जय जय गोस्वामी देखें, इस प्रकार संसार में चल रही है, तो संसार के प्रति उनका बड़ा विरक्ति उत्पन्न हुआ, वैराग्य आ गया। तुरंत अपने घर द्वार सब छोड़कर हाँ नीलाचल आ गए, जगन्नाथपुरी आ गए। आज जगन्नाथपुरी आकर के जगन्नाथ जी का दर्शन जैसे ही लेते हैं, जगन्नाथ जी के प्रति इतने ही आकर्षित हो जाते हैं, हाँ एक सन्यासी जैसे जगन्नाथ धाम में ही रह गए, हर घर जाने के नाम ले लिए, बस घर भूल गए, घर छोड़ दिए और जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का निर्माल्य लेते थे और एक सन्यासी के जैसे इधर उधर रह रहे थे। घर तो नहीं मिल रहा था, प्रसाद तो मिल जाता था जयदेव गोस्वामी को, किंतु रहने के लिए ज्यादा नहीं मिल रहा था। तो बटवृक्ष हाँ जगन्नाथपुरी में एक बरगद के पेड़ के नीचे वो रहा करते थे, बरगद के पेड़ के नीचे रहा करते थे। तो अचानक एक दिन वो बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर वो ध्यान लगा रहे थे, ध्यानस्थ थे। तो जैसे ही ध्यानस्थ हुए, तुरंत बाल मुकुंद उनके सामने बड़े ही आकर्षक, बड़े ही सुंदर रूप लेकर के नाचने लगे और वो रूप को दर्शन करके जयदेव गोस्वामी के भीतर कवित्व भी स्पूर्ण हुआ, उनके कवि के जो भाव है वो अंकुरित हुआ, तुरंत वो गीत गोविंद का रचना करने लगे। उसी समय से गीत गोविंद का रचना करने लगे और गीत गोविंद का रचना करके वो गाते थे, सुन रहे थे और दूसरे को सुना रहे थे। तो एक दिन जयदेव गोस्वामी बरगद के पेड़ के नीचे बैठ करके गीत गोविंद गा रहे थे, तो अचानक एक ब्राह्मण आया, आकर के उनके कन्या को जयदेव गोस्वामी को अर्पण किया, देख करके बोला कि आज से ये कन्या जो है आपका पत्नी है और आपका देखभाल आप करो और मैं जा रहा हूँ, ये जगन्नाथ जी का आदेश है। क्योंकि ब्राह्मण जो है पहले से निसंतान था और जगन्नाथ जी के पास जाकर के हमेशा जगन्नाथ जी को प्रार्थना करता था कि प्रभु कृपा करके निसंतान दुख से कम बचाओ, मुझे एक संतान दे दो, कुछ भी दे दो लेकिन एक संतान तो दे दो। इसी प्रकार ब्राह्मण जब स्तुति कर रहे थे जगन्नाथ जी के उद्देश्य से, जगन्नाथ जी उनके प्रार्थना से बड़े ही प्रसन्न हुए और उनके और वो समय ब्राह्मण जी जगन्नाथ जी के साथ एक कंडीशन रखे थे कि प्रभु जब मुझे कोई संतान हो जाएगा तो संतान को ला करके मैं आपकी सेवा में हाजिर दाखिल कर दूंगा। तो जगन्नाथ जी उनको एक संतान के रूप में कन्या संतान दिए, कन्या दिए और उपयुक्त वयस्क जब हुआ तो कन्या को ला करके ये ब्राह्मण ने जगन्नाथ जी को अर्पण किए। जब जगन्नाथ जी को अर्पण किए तो जगन्नाथ जी बोले कि थोड़ी दूर में मेरे एक भक्त है, हाँ उनका नाम जयदेव गोस्वामी है, तो उनको लेकर के उनके सेवा में ये आपका ये कन्या रत्न को दे दो। तो ये सुन करके जगन्नाथ जी का आदेश लेकर के ब्राह्मण उनके पास पहुंचे और अपनी कन्या को देते हुए कहें कि ये जगन्नाथ जी का आदेश है, आज से ये कन्या को आप स्वीकार कीजिए। तो ये बात जब ब्राह्मण के मुंह से जयदेव सुने तो तुरंत कहा, अरे मैं तो एक सन्यासी जैसे रह रहा हूँ, तो आपका कन्या को लेकर के मैं क्या करूंगा, तो ये कन्या आप लेके जाइए, मुझे नहीं चाहिए, इस पर कह रहे थे। तो ब्राह्मण विरक्त होकर के वो कन्या को जयदेव गोस्वामी के पास छोड़ करके भाग गए। जब भाग गए तो अभी आप क्या किए, तो पद्मावती जो कन्या का नाम था पद्मावती, पद्मावती क्या की, जयदेव गोस्वामी के चरण का धूल को ला करके अपने सर में रखे। जैसे ही रखे तो जयदेव गोस्वामी और क्या करेंगे, एक प्रकार का बंधन में बंध गए। तो और ये सोचे कि अकेला था ठीक था, अबे ये उनको लेकर के पेड़ के नीचे बैठना ठीक नहीं होगा, तो अपने गांव लौटे। अपने गांव लौट करके अपने घर में राधा माधव जी को स्थापन किए। राधा माधव जी जो है जयदेव गोस्वामी का प्राणधन है। तो हमें जयपुर गए थे, हमारे भक्त थे तो उन्होंने हमें दर्शन कराए थे, वो पीछे बैठे हैं वो भक्त, हाँ तो हमें राधा माधव जी के दर्शन कराए थे। तो ये जयपुर में है, तो घर में आए और राधा माधव जी को प्रतिष्ठित करके पति पत्नी दोनों राधा माधव जी को सेवा किए और भजन में लगे और पद्मावती भगवान के लिए नैवेद्य प्रस्तुत करती थी और जयदेव गोस्वामी उनको राधा माधव जी को अर्पण करते थे। इसी प्रकार करके हाँ तो सुख से जीवन बिता रहे थे और पति पत्नी दोनों गीत गोविंद को गा रहे थे। तो जब गा रहे थे वो वार्ता फैलने लगा, जयदेव गोस्वामी का गीत गोविंद इतने लोक लोक में घर घर में प्रिय होने लगा, तो सारे लोग उनको तारीफ करने, प्रशंसा करने लगे और जयदेव गोस्वामी जगन्नाथपुरी में और जगह में घूम घूम के वो गीत गोविंद सुना रहे थे। तो जगन्नाथपुरी में आए, जगन्नाथ पुरी में आकर वो जगन्नाथ जी के प्रसन्नता के लिए गीत गोविंद को सुनाने लगे, गाने लगे। जब जगन्नाथ पुरी के राजा जयदेव गोस्वामी का गीत गोविंद को सुना तो उनके मन में इच्छा हुआ, मैं भी एक गीत गोविंद बना करके जगन्नाथ जी को अर्पण करूं। ये जगन्नाथ पुरी के राजा इस प्रकार का विचार लिया। अब विचार करके वो एक गीत गोविंद लिखने लगा। लिख करके जगन्नाथ जी के सेवक के पास दे करके बोला, कल से ये मेरा लिखा हुआ गीत गोविंद गाना चाहिए, हाँ आप लोग गाइए। तो जगन्नाथ जी के सेवक लोग बड़े धर्म संकट में गिर गए। अभी क्या किया जाए, जयदेव गोस्वामी भगवान के महान भक्त हैं और ये जो है ये राजा है, हम किसके बात सुनेंगे। तो जगन्नाथ जी का बड़े सिंहार है इसके समय पहले, तो राजा का गीत गोविंद और जयदेव गोस्वामी का गीत गोविंद, दोनों का गीत गोविंद को जगन्नाथ जी के पास रखा गया। रख करके दरवाजा फड़ बंद कर दिया गया। जब पहाड़ खुला गया तो देखा गया कि राजा के गीत गोविंद के ऊपर जयदेव गोस्वामी का गीत गोविंद रहा है। राजा का गीत गोविंद नीचे है और राजा के गीत गोविंद के ऊपर जयदेव गोस्वामी का गीत गोविंद है। तो जगन्नाथ जी यहाँ पर ये बात कहना चाहते हैं कि राजा जदियो तुम्हारा गीत गोविंद मेरे लिए है, लेकिन तुम्हारा गीत लिखा हुआ गीत गोविंद उतना प्रिय नहीं है जितने मेरा भक्त जयदेव गोस्वामी का गीत गोविंद प्रिय है। लेकिन ये बातों के पर राजा ने नहीं समझ रहे थे, लेकिन रात को जाकर के जगन्नाथ जी उनको बताएं कि देखो राजा दुखी नहीं हो, हाँ आपका गीत गोविंद प्रिय है, लेकिन आपका गीत गोविंद कैसे है ना, ज्ञान मिश्रित लिखा है, लेकिन जयदेव गोस्वामी का जो गीत गोविंद भक्ति मिश्रित हाँ ये है, इसीलिए उनका गीत गोविंद मेरे लिए प्रिय है। जब जगन्नाथ जी स्वयं जाकर जाकर समझा, तब जाकर राजा हाँ अपनी गलती समझे और जयदेव गोस्वामी का लिखा हुआ गीत गोविंद को आदर दिए, सम्मान किए। हाँ उसी प्रकार जयदेव गोस्वामी का उस वो समय से और जयदेव गोस्वामी का गीत गोविंद का आदर और बढ़ गया। घर घर में गाने लगे, घर घर में वो गीत गोविंद का प्रचार शुरू हुआ। इसी प्रकार जो शुरू प्रचार हो रहा था तो एक जो जगन्नाथपुरी में एक माली समझ रहे ना, माली की कन्या वो बैगुन खेती में वो बैगुन तोड़ रही थी हाँ, और गीत गोविंद गा रही थी। तो उनका गीत गोविंद इतने उनके उनके मुंह से जो गीत गोविंद निकल रही थी, वो गीत गोविंद की शुद्धता, उनके बोलने की जो शुद्धता, उनके गाने की जो शुद्धता इतने प्रबल थी, तो जगन्नाथ जी को आकर्षित किया। और जगन्नाथ जी अपने मंदिर छोड़कर के बैगुन खेती में चले गए। जगन्नाथ जी अपने मंदिर छोड़कर ये गीत गोविंद को श्रवण करने के सुनने के लिए वो माली के बैगुन खेती में जाकर के पहुंच गए। हाँ और जो इतने वो तलीन होकर के गीत गोविंद सुन रहे थे, मालिनी के पीछे पीछे भाग रहे थे, उनको कोई ख्याल ही नहीं था, जगन्नाथ जी को कोई ख्याल ही नहीं था हाँ तो हमारे भाग्य है जगन्नाथ जी यहाँ पर है। और भाग्य को जोग ऐसे है कि आज जगन्नाथ जी का रथ यात्रा है, ऐसे एक महा महोत्सव के अवसर पर आज एक महान भक्तों के जो जगन्नाथ जी के प्रति आसक्ति, जगन्नाथ जी के जो प्रति जगन्नाथ जी के प्रति उनके जो भक्ति हाँ, उनको उनके कीर्ति को गाने सुनने मात्र से ही वैकुंठ के अधिकारी हम बन जाते हैं। इसीलिए भक्तों की जो कीर्ति भगवान की कीर्ति से और हाँ और हमारे जीवन को उद्धार करने के लिए एक प्रकार का खुराक प्रदान करती है। तो जयदेव गोस्वामी के हाँ ना मालिनी जो गा रही थी, जगन्नाथ जी उनके पीछे भाग रहे थे हाँ, उनको कोई ख्याल ही नहीं था। और जगन्नाथ जी के सारे जो पहने हुए वस्त्र बैगुन के कांटे के द्वारा फट गए थे। और गीत गोविंद श्रवण कर सुनने के बाद जगन्नाथ जी आकर के अपने घर में पहुंच गए। और सुबह सुबह जगन्नाथ जी के जो सेवक लोग जब खोले दरवाजा खोले, देखे अरे अद्भुत है, ये सब कैसे हुआ, जगन्नाथ जी का वस्त्र सब कैसे फटे हुए हैं। तो ये बात जगन्नाथपुरी के जो राजा थे उनके कान में पहुंचा हाँ, तो बड़े दुखी हो गए, क्या गलती हो गया प्रभु बता दीजिए हाँ कहिए हाँ। तो इस प्रकार जब राजा ने बड़े ही विनती हुए, बड़े ही अपने विकल होकर के जगन्नाथ जी की स्तुति किए। आज जगन्नाथ जी रात को राजा के पास पहुंचे और राजा को कहे, राजा दुखी नहीं हो हाँ, तो मेरे एक भक्त ने गीत गोविंद गा रहे थे तो उनका पीछा करते करते मेरा ये हालत है हाँ, तुम ऐसा करो कल से मेरे ही मंदिर कुछ व्यवस्था करो, तो मैं रुक जाऊंगा और मंदिर बाहर नहीं जाऊंगा, बाहर तो जाऊंगा हाँ, लेकिन आप राजा के हिसाब से आप कुछ व्यवस्था करो। तो तब जगन्नाथ जी अरेंज करो तो जगन्नाथ जी के आदेश लेकर यहाँ तो राजा ने दूसरे दिनों से जगन्नाथ मंदिर में, पहले तो तेलंगा संप्रदाय के द्वारा जगन्नाथपुरी में गीत गोविंद सुनाया जा रहा था, लेकिन अभी तभी से मालिनी के द्वारा गीत गोविंद को सुनाया गया जगन्नाथ जी के प्रसन्नता के लिए। उसी प्रकार जब जयदेव गोस्वामी अपने भक्तिमय कार्य कर रहे थे, जगन्नाथ जी के प्रति भक्ति बढ़ा रहे थे, हाँ, तो अचानक उनको एक दिन इच्छा हुआ कि मैं और जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ एक प्रकार का पाट पहना जाए। पाट मतलब एक कीमती वस्त्र, हाँ, ये उड़ीसा के लोग जानते हैं पाट क्या होता है, मठा क्या होता है, ये जानते हैं, वो जगन्नाथ जी को पहनाते हैं। तो इसी प्रकार जगन्नाथ जी को एक पाट पहनाते हैं, ब्रह्मपुरी पाट। जगन्नाथपुरी में एक ब्रह्मपुर है जगह, तो ब्रह्मपुर में एक प्रकार कपड़ा बनती है। पिपीली में भी, जगन्नाथपुरी से थोड़ी दूर पिपीली करके एक जगह है, हाँ, वहाँ पर जगन्नाथ जी का वस्त्र से बड़े प्रसिद्ध है सारे विश्व में, सारे जगत में, हाँ। तो जयदेव गोस्वामी के मन में भी इच्छा हुआ, मैं एक जगन्नाथ जी के लिए एक पाठ बनाऊ जिसमें गीत गोविंद का पद अंका जाए। तो जयदेव गोस्वामी तंतियों के पास गए और उनको बड़े अनुरोध किए कि देखो जगन्नाथ जी के प्रति मेरा एक भेंट देने की इच्छा, तो आप कृपा करके मुझे कुछ मदद कीजिए। तो जयदेव गोस्वामी के ये अनुरोध को लेते हुए तंती लोग, हाँ, तंती जो कपड़ा बनाते हैं, तो ये लोग एक कपड़ा बनाए और जयदेव गोस्वामी गीत गोविंद गाना शुरू किए और तंती लोग गीत गोविंद का पद को वो कपड़े के ऊपर लिखते गए, हाँ, लिख रहे थे और जयदेव गोस्वामी गीत गोविंद का पद को गाते गाते वो इतने तलीन हो गए, इतने ध्यानस्थ हो गए, और उनको होश ही नहीं रह रहा, वे इतने ध्यान में चले गए, इतने मग्न हो गए, तो समाधिस्थ हो गए और उनके मुख से कुछ और निकल ही नहीं रहा था। तो अभी तंती लोग क्या करें, अभी तो कार्य तो आधा हुआ है, बाकी कार्य कैसे होगा। और जब जयदेव गोस्वामी गीत गोविंद के द्वारा समाधिस्थ हो गए थे, ठीक उसी समय एक साधु वहां पर पहुंचे, हाथ में करता लेकर के गीत गोविंद को गाते गाते वहां पर पहुंचे। तो साधु जी वहां पर पहुंचे, सारे तंती लोग बोले देखो, हाँ, आप गीत गोविंद गा रहे हो और जयदेव गोस्वामी गा रहे थे, उनका कार्य अधूरा रह गया, जगन्नाथ जी के लिए जो उपहार उनको देना था लेकिन अधूरा रह गया, उनको पूरा करना है, और जयदेव गोस्वामी अभी ध्यानस्थ हैं, तो आप तो गीत गोविंद का पद आवृत्ति कर रहे हो, यदि हमें कुछ हमारे लिए कुछ करोगे तो वो कार्य हम पूरा कर सकते हैं। तो साधु ने बोले अवश्य अवश्य, मैं आप लोगों को ये कार्य मैं हाथ दूंगा। तो ये कहते हुए साधु जी वो गीत गोविंद को गाने लगे और वो जो कार्य करने वाले वो कार्य को पूरा किए। तो जब कार्य पूरा हो गया तो, और ये जो साधु जी थे और कोई नहीं थे, स्वयं जगन्नाथ जी थे, अपने भक्तों का कार्य को पूरा करने के लिए। जब भक्त जब आदित्याचार्य के जैसे आदित्याचार्य ने कह दिया कि प्रभु मेरे द्वारा ये कार्य रोका हो नहीं, संभाला नहीं जा पा रहे, आपको आना ही पड़ेगा, और चैतन्य महाप्रभु नाड़ा का बात सुन करके प्रकट हुए, उसी प्रकार भक्त जब वो कार्य कर, भक्त जो सक्षम है, हाँ, भक्त वो सक्षम है, लेकिन लीला को और कुछ आगे बढ़ाने के लिए भगवान स्वयं प्रकट होकर के अपने भक्तों की कीर्ति को बढ़ाते हैं। तो वहां पर जगन्नाथ जी प्रकट होकर के वो कार्य को पूरा किए, पूरा करके चले जा रहे थे। तो वो तंती लोग बोले आप जा रहे हो, लेकिन जयदेव गोस्वामी जब उठेंगे तो हम क्या जवाब देंगे। हाँ, तो वो साधु जी बोले देखो मेरा बहुत काम है तो मुझे जाना है, तो जयदेव गोस्वामी जब उठेंगे नींद से तो आप लोग बता देना कि हाँ कोई एक आपका व्यक्ति आए थे, हाँ, आप जो सो गए थे वो कार्य को पूरा करके चले गए। साधु जी कह दिए, तो ये कहके जयदेव गोस्वामी ना साधु जी चले गए। तो जब जयदेव गोस्वामी उठे नींद से तो कहे अरे अरे मैं थोड़ा सो गया, हाँ ये कार्य पूरा करना है, तो फिर आप कार्य पूरा करो। तो गीत गोविंद गाना शुरू किए, जैसे गाना शुरू किए तो जो कपड़ा बना रहे थे वो लोग कहे कि जयदेव जी आप जो सो गए थे, आपका कोई एक व्यक्ति आया यहाँ पर, आया आकर के आपका कार्य को पूरा कर दिया, और वो भी कह के गया कि आपको ये बात बताने के लिए। तो जयदेव गोस्वामी सोचे अरे ये कैसे है, तो जो गीत गोविंद तो पद्मावती और मैं ही जानता हूँ, हम दोनों जानते हैं, और किसी को तो पता ही नहीं है, तो फिर ये बात तो फिर तीसरा व्यक्ति कौन है जिनको गीत गोविंद पता है। तो लाओ तो देख, मैं देखूं तो सारे ये लोग गीत गोविंद ये कपड़ा को ला करके जयदेव गोस्वामी को दिखाएं। तो जयदेव गोस्वामी जब देखें ये सख्या कुछ समझ गए ये जगन्नाथ जी का कार्य है। हाँ तुरंत वो रोने लगे। हाँ अरे आप लोग धन्य हो जो प्रभु को मैं नहीं देख सका तो आप लोग वो प्रभु को दर्शन वो प्रभु का दर्शन लिया तो आप लोग मेरे से भी पुण्यवान हो। तो तुरंत वो सारे लोग कहने लगे यदि जगन्नाथ जी का दर्शन हमें हुआ ये केवल आपकी वजह से, आप हमारे पास हो थे करके जगन्नाथ जी का दर्शन हमें हुआ, नहीं तो हमें कैसे जगन्नाथ जी का दर्शन करते। तो जयदेव गोस्वामी वो कपड़े को लेकर के पाठ को लेकर के वस्त्र को लेकर के जगन्नाथपुरी गए और वहां पर जाके जगन्नाथ जी के सेवक को दिए और कहें कृपा करके ये वस्त्र को आप लोग जगन्नाथ जी को भेंट दो। तो जयदेव गोस्वामी का ये उपहार को जब देने जा रहे थे तो राजा सुने। हाँ राजा ने आदेश दिए कि यदि जयदेव गोस्वामी का ये वस्त्र जगन्नाथ जी को प्रिय है तो स्वयं जगन्नाथ जी ये वस्त्र को प्रमाण करके दिखा दें कि मुझे ये वस्त्र चाहिए। तो प्रमाण के स्वरूप राजा ने आदेश दिए निकट में जो मार्कंडेय पुष्करणी है, क्योंकि भगवान जब जो पुष्करणी में स्नान करते हैं उनको तालाब नहीं कहते हैं, उसको पुष्करणी कहते हैं। तालाब में मछली रहते हैं, साधारण मछली, असाधारण लोग स्नान करते हैं, लेकिन भगवान जो जहां पर स्नान करते हैं उनको पुष्करणी कहते हैं। तो जगन्नाथ जी का प्रिय वो जगह था इसलिए मार्कंडेय पुष्करणी। हाँ वो जगन्नाथ मंदिर के बगल में ही है। तो राजा ने आदेश दिए कि जाओ, हाँ ये वस्त्र को पानी में फेंक दो, यदि ये वस्त्र पानी में डूब जाएगा तो फिर ये वस्त्र जगन्नाथ जी के भेंट के योग्य नहीं है, यदि नहीं डूबेगा पानी में भासे रहेगा तब ये वस्त्र को आप जगन्नाथ जी को अर्पण कर सकते हो। तो राजा के आदेश लेकर जगन्नाथ जी के सेवक लोग वो वस्त्र को लिए और मार्कंडेय पुष्करणी में फेंक दिए। हाँ लेकिन फेंक दिए तो वो वस्त्र पानी के ऊपर ऐसे ही रहा, वो डूबा नहीं। तो जगन्नाथ जी प्रमाण करके दिखाएं मेरे भक्तों का छोटा सा छोटा चीज भी मेरे लिए कितने महान है, कितने बड़ा है। मैं मेरा भक्तों की दिया हुआ छोटा सा चीज को अपेक्षा करता हूँ, जितना मेरा प्रिय वैकुंठ की चीज प्रिय नहीं है। हाँ मेरे भक्त जी कुटिया में रह करके एक छोटा सा चीज के लिए मुझे बुलाएं, मैं वैकुंठ छोड़कर मेरे भक्तों का उपहार को उनके कुटिया में जाके कुटिया में वो चीज को लेने के लिए मेरे भक्तों की कुटिया में जाके पहुंच जाता हूँ। यही बात भी चैतन्य कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में भी अपने लाइन में बताएं, बिजुर रे घरे कृष्ण करी लो भोजने, दुर्योधन का 56 प्रकार का आइटम को छोड़ करके भगवान श्री कृष्ण बिजुर के घर में जाकर बिजुर के साथ भात खा लिए थे। तो यहाँ से प्रमाण होती है जयदेव गोस्वामी का छोटा सा छोटा चीज भी जगन्नाथ जी के लिए कितने प्रिय है। तभी से जयदेव गोस्वामी का जो भेंट है, जो ये जो उपहार है, हाँ जगन्नाथ जी को अर्पण किया गया। हाँ इसी प्रकार जयदेव गोस्वामी तो गीत गोविंद का पद को गा रहे थे, लिख रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। एक बार गीत गोविंद को लिखते लिखते एक जगह में वो अटक गए। एक लाइन था, स्मरल गरलं खंडनं मम शिरसि मंडनं देई पद पल्लव मुदारं। तो जयदेव गोस्वामी ये गीत गोविंद का ये पद को लिखते लिखते वहीं पर अटक गए। तो उनके मन के भीतर एक प्रकार का वो कंफ्यूज में, दुविधा में हो गए, कैसे हो सकता है भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मांड के पति है, वो कैसे राधा रानी का चरण कमल को पकड़ सकते हैं। लेकिन ये ब्रज की लीला है, राधा रानी जब मान चले जाते हैं तो उनका मान को टुटाने के लिए भगवान श्री कृष्ण को राधा रानी का चरण कमल को पकड़ना होता है। हाँ उनको समझाना होता है चरण कमल को पकड़ करके। हाँ तो ये भगवान के विशेषत्व है, राधा रानी सर्वश्रेष्ठ भक्त है, जितने भक्त है संसार के भीतर राधा रानी सर्वश्रेष्ठ भक्त है। और अपने भक्तों के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपने उनके चरण भी पकड़ करके उनको समझाते हैं, रूठो मतो, रूठ जाओ मत, हाँ तो हंसो, मान टूटाओ, इसी प्रकार कह करके तो अपने भक्तों के चरण कमल को भी पकड़ लेते हैं। तो ये पद को जब जयदेव गोस्वामी गा रहे थे, स्मरल करलं खंडनं मम शिरसि मंडनं देही पद पल्लव मुदारम, हाँ तो इसी प्रकार जब गा रहे थे जयदेव गोस्वामी वो अटक गए वहीं पर, कैसे ये कैसे संभव है। तो अपने पद को वहीं पर रख करके वो नदी में स्नान करने के लिए चले गए। हाँ चले गए तो वहां पर अपने भक्तों की संदेह को दूर करने के लिए अपने स्वयं भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों की संदेह को दूर करने के लिए अपने भक्तों के प्रति कितने वो आकृष्ट हैं, अपने भक्तों के प्रति भगवान इतने आसक्त हैं, वही बात को केवल यही बात को दिखाने के लिए स्वयं जगन्नाथ जयदेव गोस्वामी का रूप बना करके पद्मावती के जयदेव गोस्वामी कुटिया में प्रवेश किए। आप प्रवेश करके तुरंत पद्मावती लाओ मेरे जो ताल पोथी, हाँ पहले समय में कोई कागज कलम नहीं था, पहले समय के जो लोग थे वो जो पाम ट्री है ना, पाम ट्री का पत्ता को बना करके वो लकड़े के पेन में इंक डुबा करके वो लिखते थे। पाम का ट्री वो समय कागज था। हाँ हमारे जो पहले समय में गांव में देखे, हमारे जो कुंडली बनता है तो पाम का ट्री में बनता है, उससे एक पत्ते में बनता है। तो जयदेव गोस्वामी पाम ट्री के पत्ते के द्वारा वो गीत गोविंद लिख रहे थे। और जब जयदेव गोस्वामी नदी में स्नान करने के लिए चले गए तो वहां पर जगन्नाथ जी वहां पर अपने जयदेव गोस्वामी के घर में पहुंच कर पद्मावती लाओ तो वो मेरे जो लिख रहा था वो लाओ तो। तो पद्मावती आकर देखे, अरे आप तो अभी नदी में स्नान करने के लिए जा रहे थे तो फिर वापस इतने जल्दी कैसे आ गए? तो ये जयदेव गोस्वामी का रूप बना करके जो जगन्नाथ जी गए वहां पर थे तो कहने लगे, जो मैं जो गीत गोविंद लिख रहा था ना वो पद मेरा मन में आ गया, याद आ गया, तो उसको लिखने के लिए मैं वापस आ गया, तो लाओ मैं लिखता हूँ। और पद्मावती ने ला करके दिए और जयदेव गोस्वामी लिख दिए। और लिखने के बाद पद्मावती को जगन्नाथ जी कह रहे हैं, जगन्नाथ जी का रूप नहीं था जयदेव गोस्वामी का, तो जयदेव गोस्वामी वहां पर कह रहे हैं, देखो बहुत विलंब हो गया है, नदी तक मैं नहीं जा सकता, ये बगल के कुएं से मुझे पानी निकाल दो, मैं यहीं पर स्नान करके राधा माधव जी को नैवेद्य अर्पण करूंगा। तो पद्मावती कुएं से पानी निकाल करके दिए। देखिए कितने बड़े भाग्यवान है ये, पहले समय में ये भक्त होते थे साक्षात ऐसे भगवान के साथ बात करते थे, कितने महान है ये लोग, महान थे, स्वयं सीधे सीधे सामने सामने भगवान का सहवास, सामने सामने भगवान का साथ बात करते थे। हाँ तो ऐसे भक्त महान है, ऐसे लोगों का कीर्ति को जब हम गाएंगे तो निश्चित कल्याण होगा, इसमें दो बात नहीं है। हाँ तो पद्मावती कुएं से पानी निकाल करके दिए और जगन्नाथ जी स्नान किए, जयदेव गोस्वामी स्नान किए और स्नान करके राधा माधव जी का आके अर्पण किए, पद्मावती जो नैवेद्य बनाए थे अर्पण किए। और अर्पण करने के बाद पद्मावती जयदेव गोस्वामी को दिए, प्रसाद दिए और खा करके अपने विश्राम कक्ष में चले गए। विश्राम कक्ष में जाने के बाद तो पद्मावती प्रसाद लेने के लिए बैठ गए। और प्रसाद लेने के लिए बैठ ही थे और जो असली जयदेव है उनके जो पति थे वो नदी में स्नान करने गए, उनके पति जो गए थे तो वो वापस आके पहुंचे। जो पहुंचे, हाँ पहुंच कर देखे, अरे ये कैसे बात हो गया, आप तो कभी मेरे पहले प्रसाद नहीं ग्रहण नहीं करते, आज आपको क्या हो गया, क्या भूख लग गया? ठीक है मेरा आना आते आते थोड़ा विलंब हो गया, तो ठीक है ले लीजिए। हाँ तो पद्मावती देख रहे, अरे वो तो ऐसे बकवा जैसे देख रहे हैं, अरे कैसे बात हो गया, तो आप तो थोड़ी पहले आए और तो आपने प्रसाद लिए उसके बाद आपके बाद में लिया, तो ऐसे हाँ मैं आ गया, ये कैसे बात कह रहे हो, आप नहीं आए अभी, आप नदी में स्नान करने के लिए गए थे और आधे रास्ते से आकर के मुझे बोले कि जो गीत गोविंद आपका लिखा हुआ तो आपका याद आ गया, मुझे बोले देने के लिए आपने दिया, आपने लिखा और उसके बाद आपने बोला कि कुएं से पानी निकाल के दो मैं स्नान करूंगा, मैं सब किया, आपको दिया प्रसाद दिया, आपने लिए, हाँ तो आपने विश्राम करने के लिए गए, ऐसे कह करके वो विश्राम कक्ष में पद्मावती चले गए। जाकर अरे वो कहाँ गए ऐसे आवाज करने, अरे वो कहाँ है, वो कौन है तो जयदेव गोस्वामी समझ गए क्या ये लीला क्या चल रही है, पद्मावती के भीतर क्या लीला चल रही है, भगवान क्या लीला कर रहे हैं, वो समझ गए। ठीक है आप जो लिखा हुआ वो चीज को ला दो। तो पद्मावती को कहें, जयदेव गोस्वामी कहें, वो जो लिखा हुआ चीज को लाओ तो देखूं मैं। तो पद्मावती कहें वो लिखा हुआ गीत गोविंद वो ला करके दिखाए। जब जयदेव गोस्वामी देखें, ये जो स्मरल गरलन खंडनम अम शिरसि मंडनम दही पद पल्लव मुदारम, ये जो वहीं पर अटके थे वही पंक्ति को स्वयं जगन्नाथ जी जयदेव गोस्वामी का रूप लेकर के आकर के वो पद को पूरा करके चले गए। तो वहां पर हाँ जयदेव गोस्वामी अपने पत्नी के ऊपर इतने आकृष्ट हो जाते हैं, कितने भाग्यवान हो, इतने तपस्या जीवन भर में कि जो करके जो जगन्नाथ जी का दर्शन मुझे प्राप्त नहीं हुआ, तो आप कितने भाग्यवान हो, आप स्वयं प्रभु आकर के आपके हाथ से सेवा ग्रहण किए, आप उनको स्नान कराए, हाँ प्रसाद दिए, दर्शन लिए, तो मेरे से तो आप महान हो, महाभाग्यवान हो। मुख्य बात तो यह है, शुद्ध भक्त का करीब जाने से बिना प्रयास से ये फल प्राप्त हो जाती है, बिना मेहनत से ये फल अपने आप हमारे हाथ में आ जाता है। इतने बड़े संपत्ति का मालिक ऐसे ही ऐसे बन जाते हैं। हाँ, ये पद्मावती को ये फल प्राप्त हुआ। और आखिर समय में जयदेव गोस्वामी गुंडीचा मंदिर, जगन्नाथपुरी में जो गुंडीचा मंदिर, वही गुंडीचा मंदिर के बगल में दस अवतार मठ में रह करके जयदेव गोस्वामी वहां पर अपने साधना कर रहे थे। और साधना करते करते हाँ उनको दस अवतार, भगवान का जो दस अवतार है, हाँ वो दस अवतार का दर्शन हुआ। और दस अवतार दर्शन करते करते अपने हाँ वो गीत गोविंद को रचना किए थे ना, रचना का जो गीत गोविंद रचना किए, आज घर घर में जगन्नाथ, खास करके ऐसे तो सारे संसार हैं, लेकिन खास करके उड़ीसा में हाँ ये गीत गोविंद अति प्रिय है। मृत्यु के पहले मृत्यु के बाद भी ये गीत गोविंद को उड़ीसा के घर घर के लोग हाँ रटते रहते हैं। आज जय जय गोस्वामी के द्वारा ये गीत गोविंद हमें एक प्रकार का मार्ग हाँ दिखाता है जगन्नाथ जी को साक्षात दर्शन करने के लिए। यदि कोई व्यक्ति गीत गोविंद का आश्रय लेता है, यदि कोई व्यक्ति गीत गोविंद का पद को आवृत्ति करता है, भगवान जगन्नाथ जी अति आसानी से उनके हृदय में प्रकट हो जाते हैं, अति सहज से जगन्नाथ जी उनके हृदय में प्रकाश हो जाते हैं। तो आज एक महान दिन भी है, हाँ गीत गोविंद का कीर्ति, गीत गोविंद का महिमा को गाते गाते और गीत गोविंद का रचना करने वाले जयदेव गोस्वामी का कीर्ति को गाते गाते हाँ यदि इस प्रकार का भाव केवल हमें हृदय में अपना लेंगे तो जू बीच में जगन्नाथ जी हमको दर्शन दे देंगे। तो यही आशा करते हुए मीरा रूप से हमें यदि जू के ओर चल पड़ेंगे तो वहां पर रथ के ऊपर जगन्नाथ जी का दर्शन हमें अवश्य प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रील प्रभुपाद की जय, जय गोस्वामी जी की जय, जगन्नाथ स्वामी की जय।